धन्यवाद पल्लवी जी। मैं थोड़ा सा आपके आपको मेरे बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लगभग 4 वर्ष की उम्र से ही चित्र बनाती आई हूँ। हम कलकत्ता में पले, जहाँ पे वो वातावरण बड़ा ही कलामय था। घर घर में गायन, नृत्य, नाटक या चित्रकला, इन सब बातों को प्रेरित किया जाता था। जैसे कि रविंद्र संगीत है या शास्त्रीय संगीत है या कथक नृत्य है, ये सब सिखाने की एक लगभग परंपरा रही है कलकत्ता में। स्कूल के साथ साथ हम लोग खेल हर तरह के खेल, तैरना, बैडमिंटन आदि सभी करते थे, सभी में दिलचस्पी रखते थे। और ये भी बात है कि कला का सीखना बहुत जरूरी समझा जाता था। हाँ, और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि कला का सीखना सिर्फ सर्टिफिकेट तक मर्यादित नहीं था। खुद के आनंद के लिए ये हुआ करता था और घर घर में ये परंपरा थी, ये बहुत बड़ी बात है उन दिनों में। मैं तो खुद रंगों की दुनिया में खो जाती थी। रंग और आकार मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन अवश्य होती थी। स्टेट लेवल पे मैंने कुछ मेडल भी हासिल किए हैं और घर में चित्र बनाने के अलावा आर्ट क्लास भी जाती थी। वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला। और मेरे ख्याल से इन दिनों से ज्यादा उन दिनों में हमें फ्रीडम ज्यादा मिलता था कि खुद का खुद करो, ज्यादातर कॉपी मत करना, इस तरह का कुछ वातावरण हमें मिला उन दिनों में। और हमारे कलकत्ता में तबके महाराष्ट्र मंडल है, जो अभी भी है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मंच था, क्योंकि वहाँ पे गणेश उत्सव पे खास तौर पे कार्यक्रम होते थे, क्लासिकल म्यूजिक होता था, नाटक होते थे, डांस होते थे। तो हम लोग मेरे ख्याल से मैं खुद ही नहीं, लेकिन हमारे बचपन के सारे दोस्त भी हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं।
जी मनीषा जी, ये बताइए कि कई लोग हैं जो करते हैं, चाहे पेंटिंग हो, दूसरी कलाओं की आपने बात की, लेकिन आप हाँ. अपने सफर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, टेल अस अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आपने जो आपका पैशन था, जो आपकी हॉबी थी, उसको एक तरह से आप आगे लेकर गई, तो उसके बारे में बताएं।
हाँ, धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि चित्रकला ये मेरे जीवन का बहुत अविभाज्य अंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर में भी किसी शख्स में जो कला का अंग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबने मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज किया। माता पिता ने हम दोनों बहनों को अपना अपना मार्ग चुनने में हमेशा प्रोत्साहित किया है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, क्योंकि इंजीनियर होते भी उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी आर्ट की किताबें खरीद के लाई, जो बचपन में मैं पढ़ने तो नहीं पाती थी, लेकिन मैं उनके चित्र अवश्य देखती थी। तो ऐसा ये वातावरण जो है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो मुझे बचपन में मिला। मेरी मम्मी मुझे आर्ट क्लास ले जाती थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं वहां पे जाके कुछ बनाऊं, कुछ सीखूं, ऐसा एक वातावरण हमें मिला। और उस जमाने में मुझे ये पता था कि पेरिस में एक आर्ट स्कूल है। पिताजी बताते थे कि बेटा आपको वहां जाना है पढ़ाई करने। तो जहाँ के सब घरों में इंजीनियरिंग या मेडिकल पेशे को लेके बहुत ये हुआ करता था कि आप लोग ऐसा पढ़ो कि ताकि आप किसी कुछ इससे गिने चुने फील्ड में जाओ, हमारे घर में ऐसा वातावरण नहीं था। और खुद मैं एक साइंस की स्टूडेंट थी, और साइंस की स्टूडेंट होने की वजह से मैं बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाती थी, जैसे माइक्रोस्कोप बनाने में बड़े आनंद होता था, फिजिक्स के डायग्राम्स बनाती थी, मेरे सिस्टर को भी हेल्प करती थी कि देखो आप, मैं आपको बना के दूंगी। तो इस तरह से बोर्ड की एग्जाम हो गई, उसके बाद सवाल आया कि आगे क्या करना है। हमने तय किया, सबने बैठ के ही तय किया मम्मी पापा के साथ कि आर्ट्स में मुझे जाना है, फाइन आर्ट्स में। और उसके बाद मेरे फॉर्मल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। मेरी शिक्षा BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में पेंटिंग इस विषय में नागपुर के कॉलेज में हुई, और तथा मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा यहाँ से पूर्ण हुआ। बड़ौदा में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, क्योंकि वहाँ पे मैं कला इतिहास, आर्ट हिस्ट्री, ये स्पेशलाइजेशन मैंने किया। वहाँ पे फिल्म क्लब चलता था, साहित्य, नाटक, सिनेमा आदि क्षेत्र के जानी मानी हस्तियां आती थी, तो काफी सारा इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको कहते हैं, उस टाइप का वातावरण वहाँ था। कला इतिहास इस विषय में मैंने 1984 में मास्टर्स कंप्लीट किया और उसी साल जेजी स्कूल ऑफ आर्ट में लेक्चरर पोस्ट पे मैं सिलेक्ट हुई। इन सब गतिविधियों के दौरान ही मेरी पहचान मेरे पति प्रभाकर पाटिल से हुई, जो वहाँ पे जेजी में प्रोफेसर हैं। हमने दोनों ने एक साथ ही कला शिक्षा के प्रांगण में अपना सफर जेजी में शुरू किया। हम दोनों पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे और साथ साथ कलाकार भी। जहांगीरराज गैलरी है, फिर दिल्ली दिल्ली में कई गैलरियां हैं, जैसे आर्ट टुडे, कलकत्ता में कई गैलरियां हैं, वहां पे हमारी लगातार प्रदर्शनियां होती गई। और पेंटिंग के अलावा, एग्जीबिशन के अलावा, मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से इस दरम्यान मेरा पीएचडी का भी अभ्यास पूर्ण किया। तो ये सारा चलता रहा, बच्चों की देखभाल है, करियर है, अपनी खुद के कमिटमेंट्स है, ये सब काफी चेतावनी वाली बात थी। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग दोनों एक ही क्षेत्र के होने की वजह से भी हुआ होगा, हमको ये सब बड़ा आसान लगा। थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो आई, लेकिन मेरे ख्याल से सफर काफी सुकर रहा है।
ये बताइए मनीषा जी कि क्या कभी, क्या आप महिला हैं, क्या ये कभी बैरियर रहा आपके करियर में? और दूसरी चीज ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें अनटेनस आपको बिल्कुल शिखर पर जाकर सफलता मिले, आमतौर पे माना जाता है कि चैलेंजिंग करियर हो सकता है, तो क्या इन दोनों हाँ। स्तरों पर क्या आपको किसी तरह की कठिनाई देखनी पड़ी?
मेरे ख्याल से मैं बहुत भाग्यवान रही हूँ, बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि एक तरह से मेरा जो सफर है आर्ट का सफर, वो बड़ा सहज ही रहा है ऐसे मैं कहूंगी, क्योंकि डिग्री हुई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद नौकरी भी चढ़ से लग गई। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब वजह जो है, एक तरह के से तो लक तो होता ही है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स के का जो सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट मिला, मेरे खुद की जो एक इच्छा थी कि इसी फील्ड में मैं कुछ बनूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसी खास कठिनाई का या खास डिफिकल्टी तो आई नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि आजकल तो सारे फील्ड काफी एक्सेसिबल हो गए हैं, और एक जो बच्चा है जो अपनी बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, वो 12वीं के एग्जाम के बाद तो समझ ही जाता है कि मेरी काबिलियत किसमें है। तो मेरे ख्याल से माता पिता का प्रेशर तो रहता ही है, सोसाइटी का, समाज का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इसलिए कभी कभी किसी बच्चे को, किसी लड़की या लड़के को एक लगाव रहता है, इंक्लिनेशन रहता है फाइन आर्ट्स के प्रति, तो अपना करियर चुनने का हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि आज इसमें काफी तौर पे हमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फाइन आर्ट के अलावा डिजाइन एक बड़ा अच्छा करियर बन रहा है। मेरी खुद की बेटी एनआईडी से पढ़ी है, वो उन्होंने डिजाइन किया है, और मेरे ख्याल से आर्ट और डिजाइन ये दोनों पूरक विषय है, और आज बड़ा स्कोप है, और बच्चों को रुकावट नहीं करनी चाहिए जो जो भी उनको चूज करना है उसमें।
जी अच्छा, ये सवाल आपसे पूछना अनिवार्य है कि आप जो प्रतिष्ठित जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं, उनकी उसकी पहली महिला डीन रह चुकी हैं, तो
जी,
तो
जी।
आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं यही कहना चाहूंगी कि सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के डीन के पद पर मेरी नियुक्ति होना, ये बड़ा एक ऐतिहासिक पड़ाव था। मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक पद पर मैं थी जो कि एक 160 लगभग साल पुरानी संस्था थी, और यहाँ पे काम करना एक बड़ी गर्व की बात थी। जेजे के डीन का पद बड़ा एक सम्मानीय पद रहता है, बहुत सारे कमेटियों पे, 8 कमेटी हैं, उन पे हमें काम करना पड़ता है। लेकिन आज की परिस्थिति में वातावरण बहुत ही अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, और एक चीज ऐसी है कि उच्च पद पर जो जब भी कभी कोई महिला काम करती है, तो अपने समाज की व्यवस्था ऐसी है कि उसको सहज स्वीकार नहीं करते। तो मुझे भी ये सारी डिफिकल्टीज सामना करते करते मैं इस पद को संभाली, और एक बड़ा काम मेरे हाथ से हुआ है, वो ये मैं समझती हूँ कि उसके बारे में बताऊं कि जेजी स्कूल ऑफ आर्ट में 100 साल से भी पुरानी और बहुत मौल्यवान ऐसी कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर, शिल्प और चित्र, जिनका कंजर्वेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने लखनऊ के एनआरएलसी के इस नाम की एक संस्था है, इनके साथ शुरू किया और लगातार 3 वर्ष तक ये काम चला और आज के तारीख पे ये कंजर्वेशन का काम लगभग पूरा हो गया है और सारी जो जिनका मूल्य आज लाखों में है, करोड़ों में है, ऐसी पेंटिंग हमने प्रिजर्व की है। मेरे ख्याल से ये बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं एक चित्रकार भी हूँ और कला इतिहास, कला संशोधन भी हूँ, तो आगे की पीढ़ी के लिए, आगे की जो आगे चल के जो कोई इस फील्ड में आना चाहता है, कुछ इसके बारे में जानना चाहता है, तो इसके लिए हमें हमारी भी एक ये है, हमारी भी एक हमारा कर्तव्य बनता है कि धरोहर कुछ छोड़ जाए, धरोहर के बारे में कुछ जानकारी छोड़ जाए। तो मेरे ख्याल से विदेश में जैसे एक डॉक्यूमेंटेशन का एक हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है, वैसे इंडिया में नहीं है, भारत में ये आए ऐसा मैं चाहती हूँ, और ये एक मेरे ख्याल से एक मेरे मेरा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ऐसे मैं समझती हूँ।
मनीषा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद पल्लवी जी।